हे दोस्तों, आप सुन रहे हैं और डिजिटल ब्लॉगर को और मैं हूँ असीम जुनेजा। इस चैनल पे हम बात करते हैं बिजनेस स्टोरीज की, सक्सेस और फेलियर दोनों, स्कैम, स्टॉक मार्केट फ्रॉड्स, इंडिया और दुनिया भर में क्या चल रहा है बिजनेस की दुनिया में, सब कुछ सुनने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं।
ऑफ कोर्स, अब मैं एक नया शब्द बताता हूँ, कोई नहीं बताएगा, खिंचे का काम।
सच में कोई नहीं बताएगा।
कौन सा काम? खिंचा, खिंचा,
खिंचे का काम।
जो पतंग उड़ाते हैं, पतंग। आपने अब आ गया, पतंग आया, खिंचा मारते हो। आए, नया वर्ड है खिंचे का काम। जब शेयर में ब्रेकआउट आया, आई मैंने आपको बताया था ब्रेकआउट लोगों को क्यों फेल होते हैं। 100 रुपये की चीज़ है, ब्रेकआउट आया, रेक्टेंगल ट्रायंगल कोई भी मान लो ब्रेकआउट आया, 100 रुपये की चीज़ है, वो चीज़ से एंट्री पहले ही कर जाते हैं। चीज़ से पहले ही एंट्री करें, वो बोलते हैं ब्रेकआउट सर आने वाला है। अरे आने वाला है, तुम चार्ट देख रहे हो ठीक है, पर तुम्हें दिख रहा है आ गया ब्रेकआउट? भैया दिखने पे विश्वास करना है, लगने पे नहीं। आजकल के लोग कर रहे सर जो लग रहा है ब्रेकआउट आने वाला है। अरे दिख रहा है भाव ऊपर गया है? भाव नहीं जा रहा है, बस रेट उनको दिख रहा है कि आने वाला है ब्रेकआउट। 90% ब्रेकआउट वहाँ फेंका है। उसके बाद सर फिर लोग चार्ट देखते हैं, उसमें ब्रेकआउट आ गया, आज क्लोजिंग हो गई, ले लो। गलत। ब्रेकआउट अगर आया है तो उसी समय एग्जिट घुसता है,
तो बहुत पैनिक नजर रखनी पड़ती है। जो प्राइस
बिल्कुल सारे ये पैनिक नजर का ही काम है।
जो प्राइस पे अपन बाय करने की कोशिश कर रहे हैं और ब्रेकआउट आ रहा है, दिख रहा है, वो प्राइस पे तो मिलेगा भी नहीं,
नहीं मिलेगा।
वो तो प्राइस से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा।
आपको हमेशा मार्केट रेट से सौदा मारना,
मार्केट ऑर्डर ही
मार्केट
जो मिल गया जो ले लो बस।
बस आपको ब्रेकआउट पे चीज लेनी है, शेयर आपके घर के बाहर से निकल गया तो वो चीज़ नहीं है ब्रेकआउट। शेयर आपके घर के अंदर आया, अब वो घर के अंदर से निकल रहा है, वो ब्रेकआउट है।
अभी यहाँ पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस उस ट्रेड में क्या है कि बेस पे अपन क्वांटिटी लेंगे? कि मैं कितना उठाऊँ?
क्वांटिटी नहीं लेंगे, लॉट लेंगे।
अब वही
एक फ्यूचर की लॉट, क्योंकि फ्यूचर का साइज होता है बड़ा, वो होता है 7 से 8 लाख रुपए का। आपने एक फ्यूचर की बाय किया, आपके पास क्वांटिटी आती है 1000, 1200, 1500 को, हर लॉट की अलग अलग होती है। आप समझो पतंग उड़ा रहे हो, उसमें रुकना नहीं है आपको, अगर रुके तो आपकी मौत है। जैसे ही ब्रेकआउट आया, आपने चीज ली, जो आपको मूव मिल रहा है ऊपर का 2-3.5% 3% स्टॉक में,
तब तुम्हें लगेगा कि अब यहाँ से मेरा, देखो स्टॉक वाली बात तो बहुत बेहतरीन की तुमने, क्या ये मेरा प्राइस है, यहाँ पे मुझे पता मैं निकल जाऊंगा इरिस्पेक्ट। लेकिन यहाँ पे तुम कैंडल पे खेल रहे हो, करेक्ट?
यहाँ पे कैंडल पे,
अब कैंडल का जो गेम है, कैंडल का जो गेम है वो तो बहुत छोटे टाइम के लिए होने वाला है,
बहुत छोटे टाइम के लिए होने वाला
है। तो वो छोटे टाइम का जो एग्जिट है वो कैसे?
सर एग्जिट तो प्रॉफिट ही आपको देगा। जब प्रॉफिट अनरेस्ट देना चालू करे तो पोजीशन से निकल जाओ। आपने फ्यूचर में लॉट ली हुई है, ठीक है, आपको एक ये होना चाहिए कि भाई मैं डेली के एक, सर सब बंदे की होती है एक बंदे को प्रॉफिट चाहिए होता है। मेरा ये टारगेट है, मेरे को 20-25-30 हज़ार बन गए फ्यूचर में, लेते ही अगर मेरे आ गई मूव तो ओके, नहीं तो मैं कल सुबह इसमें जो भी ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा
ओवरनाइट कैरी करोगे इसको?
ओवरनाइट कैरी करूँगा, और जिस रेट पे ख़रीदूँगा अगर मेरे लेते ही ऊपर गया ठीक है, अगले दिन मैं उसको होल्ड करूँगा, लेते ही जो मेरे को मूव आया मैं वहाँ निकल।
कैसे तो फ्यूचर्स में ये करने लग गए तो
100%
कितना टाइम लगा?
1.5 साल।
1.5 साल सीखने में
फ्यूचर में
क्या गलतियाँ की इसमें?
सर टच वुड
नहीं, डोंट टच वुड बिकॉज
नहीं पॉसिबल, कोई गलती नहीं,
गलती तो ये होगी यार, फ्यूचर का गेम ही अलग।
नहीं नहीं
मैं मान नहीं सकता,
फ्यूचर का गेम ही अलग,
बात नहीं करूँगा,
फ्यूचर का गेम ही अलग है। मैं आपको यहाँ पे ये समझाता हूँ।
सीखा कैसे पहले ये बताओ।
सर चीज़ें वही हैं, हर चीज़ वही है। आप जब आपको मैंने बोला है 2 साल आपने स्विंग ट्रेडिंग में टाइम दी, उसके बाद आपने चार्ट देखते रहने हैं। अगर बाहर दिवाली भी थे, मैंने आपको बताया था, मैं सोफे में बैठ के वीडियो सुनता था, चार्ट देखता था, इंजॉयमेंट नहीं है, ये मार्केट है, इससे अगर पैसे चाहिए सर आपको एक ही चीज़ पैसा दे सकती है, वो है टेक्निकल एनालिसिस। आपको चार्ट इतने देखने हैं, इतने चार्ट देखने कि कम से कम डेली के 700 चार्ट, अगर सुबह मार्केट आवर में देखें, मार्केट आवर के बाद देखना सुबह, अगर खुद
देखते क्या थे चार्ट?
सिर्फ टेक्निकल,
नहीं तुम पहले बता चुके हो, पर टेक्निकल्स में क्या? प्राइस मूवमेंट?
प्राइस मूवमेंट नहीं, जैसे मैं वो ढूंढता हूँ पैटर्न, जैसे डब्ल्यू पैटर्न बना, नीचे डब्ल्यू में लाइन लगाई, बिल्कुल सर बिल्कुल सिंपल काम है, इसको लोगों ने ग्लोरीफाई बहुत ज़्यादा कर दिया। एक डब्ल्यू में नीचे लाइन लगाई, एक ऊपर लाइन लगाई, उसके ऊपर शेयर निकला है, वो ब्रेकआउट है। मैं चार्ट देखता हूँ डेली, अब आगे चार्ट मैंने देखा डेली, जैसे ब्रेकआउट आने लगा, मतलब मान लीजिए एक शेयर है 100 रुपये का और नीचे उसका डबल बॉटम बनी, वो डबल बॉटम डब्लू एक ही होती है, वो 90 रुपये रेट है नीचे, ठीक है, मेरे को ये पता है मेरी सपोर्ट 90 रुपये है और ऊपर जो डब्लू बना है उसकी थी 102 रुपये। मैं देख रहा हूँ डेली चार्ट और मैंने वो अपने वो कर लिया रेट है, वो नाम उसका मैंने अपने सेव कर ली, कल मैं इसको देखूँगा। जैसे ही वो आगे डेली चार्ट पे रेट आगे मेरे 102 रुपये, अब मैं शिफ्ट हो जाऊँगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या 15 मिनट के, मैं शिफ्ट हो जाता हूँ ज़्यादातर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब मैं वो देखता हूँ 102 रुपये में जब वो ब्रेकआउट आने वाला है, अब वो शेयर क्या कर, अगर वो ब्रेकआउट तोड़ के ऊपर जा रहा है, अगर एक कैंडल जैसे 102 में ब्रेकआउट आया, एक कैंडल बनी 103 की, लोग घुस गए फॉल्स ऑफ के नीचे आ गए, एक कैंडल बनी उसके ऊपर एक कैंडल बनी 100% ब्रेकआउट पास है ना हो तो आज कोई भी एनालिस्ट होगा या जो भी देखते होंगे व्यूअर सब उठा गए।
अरे एक स्टॉक का अपना एक बिहेवियर होता है या एक ही बिहेवियर सब स्टॉक्स में दिखता है?
सब एक ही, कोई भी बिहेवियर नहीं।
पिछले 1.5 साल में एक दिन का सबसे बड़ा लॉस क्या था?
मेरा एक्चुअल में लॉस था 240,000
एक दिन में।
एक दिन में
240,000
$2,00,000
फ्यूचर्स में?
फ्यूचर में स्विंग ट्रेडिंग।
अच्छा उसका तो फ्यूचर है, स्विंग ट्रेडिंग में इतना क्वांटिटी उठाया था, बिग ट्रेड।
बिग उस दिन मेरे को अच्छा लग रहा था, आपको याद होगा एक्चुअल अपने कोविड के लोज में आ गया था 1970-1950, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था, मैंने 2000 रुपये में शेयर ले लिया, शेयर आ गया 1900, मेरे को इतना बड़ा लॉस हुआ कि मैंने वो लॉस ही बुक कर लिया डर के, इतना बड़ा लॉस, मैंने आज तक इतने बड़े लॉस कभी लिए नहीं।
इन केस आज वो सिचुएशन हो एक्चुअल कोई भी स्टॉक तो अच्छा स्टॉक,
अच्छा स्टॉक
फिर वही करोगे या क्या करोगे?
मैं अब आगे फ्यूचर में मैं सोचता हूँ सुबह खुले बाजार 10% नीचे, आज सोचता हूँ जैसे आज मेरे पास एक फ्यूचर बाय है H1 का और उसका रेट चला 2800, मैं ब्रेकआउट में काम कर रहा हूँ ठीक, अब मैंने 2800 की चीज़ ली और मैंने 2900 की कॉल भेज दी, बाजार नीचे जाए चाहे ऊपर जाए हमारा प्रॉफिट होने ही मिलना। अब तो सर मतलब जैसे जैसे आप बाजार में चलोगे ना आपको पूरी पूरी गाड़ी चलाने धीरे धीरे आ जाएगी।
से बताओ कि जब स्कूटी ऐसी चल रही थी तो बाइक क्यों चलानी?
सर चलानी पड़ेगी ना क्योंकि वो चीज घर बड़ा चाहिए,
घर बड़ा चाहिए,
सपने बड़े हैं ना सर, क्योंकि फिर ऐसे तो जॉब भी कर रहे थे, ठेला भी लगाया, अब आगे घर की रेनोवेशन की बात आपको पता होगा, अभी बजट आया था पीछे, सोरेन सेक्टर बहुत ज़्यादा गिरा था उसमें।
अच्छा
सोरेन सेक्टर के सारे शेयर
ओके,
मेरा एक सबसे बढ़िया शेयर, मैं उसको हर रेट पे नीचे के रेट पे खरीदता हूँ, HDFC लाइफ, मैंने खरीदा था शेयर, वो था शेयर 600-650 का, वो 500 रुपये में उसका रेट उस समय एग्जैक्ट चल रहा था, मैंने 520 में खरीदा हुआ था, हमारे पास क्वांटिटी प्रॉफिट की पड़ी हुई थी 1000 शेयर की जो मैं फ्यूचर में अपना काम करता था।
अच्छा वो यहाँ पे
मैंने 1000 शेयर खरीद के रखे थे HDFC लाइफ के, वो शेयर आगे 400-450। मैंने लॉजिक बनाया यार, आज की डेट में लोग बोल रहे हैं इंश्योरेंस नहीं कराएंगे टैक्स में छूट ले लेंगे, मतलब नहीं ये कैसे हो सकता है यार, मैंने अपनी 450 लिटाया, मैंने पहले अपनी 100 डाल दिया 450 रुपये में 1000 शेयर
उठा लिया,
उठा प्रॉफिट के पैसे लगा, 1000 रखे थे नीचे 520 में, फिर 1000 उठा लिया, 2000 शेयर हो गए, वो मेरी एवरेज आई 580 की, आज की डेट में शेयर है 650 रुपये। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट कभी भी की जाती है तो प्रॉफिट के पैसों से की जाती है, खुद की रकम आप लगाओगे वो हमेशा बेवकूफ़ी, प्रॉफिट के पैसे इन्वेस्टमेंट करो।
देखो सबका अपना अपना तरीका है, कोई इन्वेस्टमेंट से ट्रेड करता है, कोई ट्रेडिंग से इन्वेस्टमेंट है, या कोई ट्रेड करता करता इन्वेस्टर बन जाता है,
हाँ
है ना, सबका देयर इज अ वे टू एवरीथिंग। अच्छा तुम्हें किसी स्टॉक से कभी जैसे दुश्मनी तो हो गई तुम्हें ग्लेन फार्मा से, कभी प्यार हुआ है?
HDFC लाइफ, दूसरा प्यार है मेरा डिवीज लैब।
डिवीज लैब क्यों?
डिवीज लैब फार्मा कंपनी है और इतिहास गवाह इसका, ये इनके मालिकों ने हर साल डिविडेंड दिया है,
जो 2800 का 2200 जो हमने करीब आधे घंटे पहले बात की थी,
2800 का 2200
आएगा तो मैं ले लूँगा। अब टाइम तो चलता रहता है, स्टॉक भी वैल्यू बढ़ती रहती है, अब ये वाला जो नया प्राइस बनेगा जो अभी 3200 दिख रहा है और तुम कहोगे कि मेरा अब 2600 बन जाएगा, ये जो 400 का फर्क आया ये फर्क करते कैसे?
अगर वो 2800 की चीज़ होती है एक साल के अंदर, 2800 की 3200 चीज़ जेन्युइन है, चीज़ जेन्युइन है, मेरा 100 पॉइंट ऊपर भी ले लूँगा, 2200 की चीज 2300 में ले लूँगा, चीज़ जेन्युइन है। अगर कुछ 4000 होती है तो मैं उस शेयर को नहीं लूँगा, अब मैं फिर से लूँगा अपने रेट पे। अभी मैं,
अब तुम्हारा रेट क्या है?
अब मेरा रेट वही फिर 2200 हो गया।
इतना पीछे कैसे आएगा वो, अगर वो क्लोक कर गया?
सर वो बिल्कुल आएगा ना, वो देता हूँ एग्जाम्पल। आप बोलते हो रेट नहीं आता, अभी एक डिवीज लैब जो आपने बताया दूसरा प्यार मेरा, अभी उसका रेट था 5400 रुपये, अभी 6 महीने पहले उसका रेट आप चेक करवा लीजिए 2800 रुपये।
अच्छा,
रेट आते हैं पर आप लेने वाले नहीं होते।
इसका लेवल देखना है बस, और तुम्हारा वो लेवल वही बन जाना है कि
सारी दुनिया काम करती उल्टा, देखती फंडामेंटल 5400 में, अरे 2800 में क्यों नहीं देखनी, अब तो सारी पी हो गई एडजस्ट ऑटोमेटिक, 5400 की चीज 2800 हो गई पी ऑटोमेटिक एडजस्ट,
तो फिर देखने की जरूरत ही क्या रहेगी?
देखने की जरूरत क्या है? एक आंका स्टॉक निफ्टी का, अगर अगर नहीं अच्छा तो उसको बाहर कर दो निफ्टी से, निफ्टी जिसने बनाई या तो वो लेके आया या तो बंदा अच्छा है या तो उसको पूरी वैल्यू पता है।
करेक्ट,
नहीं अच्छा तो स्टॉक को बाहर कर दो, मैं भी निकल जाता हूँ।
एक टाइम पे मनी होल्डिंग कितने स्टॉक्स होते हैं?
18
इतना मैनेज कर पाते हो
आराम से?
अच्छा मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, MRF टायर्स,
MRF
लखपति स्टॉक,
लखपति है,
आया था बीच में 6-8 महीने पहले 70-80 हज़ार पे आया, तुम खरीदते हो उसको?
कोई स्टॉक बहुत ऊपर जाना है तो वैष्णो देवी की यात्रा याद रखिए।
ओके,
अब आप वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हो,
प्लीज
आपके पास सामान ज्यादा होगा आप तो ऊपर तक जा पाओगे, ये सामान कम होगा कि आप तो जा पाओगे,
कम होगा तो जा
पाओगे। ये सिंपल लॉजिक लगाओ ना, तो फालतू बात करनी है, कम सामान पे ही ले जाओ,
कम रेट पे लेके,
कम लोग होने चाहिए।
योर एंट्री पॉइंट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि
हाईली लिक्विडिटी स्टॉक,
वो तो सेकेंडरी पॉइंट है, बट मेन पॉइंट है कि वहां पे कोई और कम लोग बायर, उसका प्राइस पे कम बायर होने चाहिए,
कम बायर होने चाहिए,
चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग होती रहे उस पे, क्योंकि तभी वॉल्यूम आएगी और तभी लिक्विडिटी
होती रहे।
बहुत मजा आया सच में यार, वंडरफुल स्टोरी,
थैंक यू अनवर,
एंड सच में बहुत मजा आया यार सुन के।